ओम शांति। आज हम सभी के समक्ष ऐसे एक विशेष आत्मा पधारी है जिनको ब्रह्मा बाबा बड़े प्यार से शिव बालक कहते थे। शरीर का नाम शिव कुमार भाई जी है, परंतु ब्रह्मा बाबा ने आपका नाम शिव बालक रखा था क्योंकि आप बाल्य अवस्था में उम्र के केवल 9 वर्ष में ही बाबा के संपर्क में आए और तभी से ही ईश्वरीय सेवा देना शुरू कर दिया था। पिछले 63 वर्ष से भाई जी समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और 66 वर्ष से ज्ञान में चल रहे हैं। विशेष साकार बाबा के समय 1963 से 1973 तक 10 वर्ष मधुबन में मम्मा बाबा के कमरे की सेवा, किचन की सेवा, गौशाला की सेवा, ऐसे ऑलराउंड सेवा आपने बाबा के समय में संभाली। उसके बाद दिल्ली में 1973 से सिक्योरिटी विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, साउंड सेवा, फॉरेनर्स की एयरपोर्ट की सेवा, ऐसी सेवाएं अभी दिल्ली में ORC में संभाल रहे हैं। और दादियों ने आपको UK, दुबई, मॉरिशस, रसिया, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इन विदेशों में भी आपको सेवा अर्थ भेजा था। अच्छा, अभी बहुत सुंदर अनुभव हम आपसे सुनेंगे भाई जी, तो शिव कुमार भाई जी को हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप हमें साकार बाबा के अंग संग बिताए हुए दिन और साकार बाबा से ली हुई पालना और अनुभव इससे लाभान्वित करेंगे। आदरणीय शिव कुमार भाई जी, ओम शांति। किसी का आधार कार्ड मिला है, स्टेज के पीछे आकर ले ले। ओडिशा के गरीबा बिस्वाल भाई जी है।
ओम शांति। सबसे पहले बाप दादा और मम्मा को एवं दादियों को बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने हमें बचपन से ही ईश्वरीय पालना बाप दादा के साथ का अनुभव करने का सौभाग्य दिया। ये ज्ञान बाबा का तो बहुत छोटी उम्र से ही मिल गया था, लगभग 7-8 वर्ष के थे तभी से ही। और समर्पित होने का जो सौभाग्य है वो मम्मा की मुखारबिंद से निकले हुए शब्द हैं। मम्मा लखनऊ में आई हुई थी तो हम यूपी से ही बिलोंग करते थे, तो हमारे लौकिक पिताजी को शांतामणि दादी जी के द्वारा ये ज्ञान मिला लखनऊ में। और मम्मा आई हुई थी तो सभी क्लास में बैठे थे तो मम्मा ने क्लास कराते हुए बीच में पूछ लिया कि कौन सेवा में निकलना चाहते हैं। तो हमारे लौकिक पिताजी ने हाथ खड़ा कर दिया। बाद में क्लास पूरी हुई तो मम्मा ने उन्हें बुलाया और उनका हाल चाल लिया और पूछा परिवार में कौन कौन है। तो मैं सबसे छोटा था, 7-8 वर्ष का। मेरे से बड़े भाई जो हैं वो 11-12 वर्ष के थे, बहनें और 2 वर्ष बड़ी थी। तो मम्मा ने कहा कि तुम सेवा में कैसे निकलोगे, तुम्हारे ऊपर तो परिवार की जिम्मेवारी है। तो उन्होंने कहा, मम्मा मैं तो आर्य समाजी हूँ और सुबह अमृत वेले उठ के हवन करता हूँ और मैं आर्य समाज का ज्ञान दूसरों को भी सुनाता हूँ। तो मम्मा ने उनकी ना लगन देख करके उनको कहा कि अच्छा, आप अपने घर में गीता पाठशाला खोल दो, छोटा सेवा केंद्र खोल दो और जो कोई आए वहाँ सबको ज्ञान दो। तो इस प्रकार से हम सब क्लास करते रहे, लखनऊ में भी करते रहे। जब घर में जाते थे अपने लौकी घर, वहां से 2 घंटे की दूरी पर है, तो वहां पर क्लास करते रहते थे। और एक बहन हमारी लौकिक में जो बड़ी बहन थी, वो अनायास ध्यान में चली गई। बाबा ने उसको ट्रांस में बुला लिया और बाबा ने मैसेज दिया कि हम लोग बाबा स्वयं कानपुर आ रहे हैं और जिनको भी मिलना हो वो बाबा से आके मिल सकते हैं। तो उस बहन ने सुनाया, सब लोग तैयार हो गए बाबा से मिलने के लिए, कानपुर जाने के लिए। लेकिन जो उस समय भाई बहने ज्ञान में चल रहे थे, वो 10-12 लोग थे, लेकिन अकेले अकेले चल रहे थे। मान लो माता जी आती हैं तो पिताजी नहीं आते हैं, इस प्रकार से सब अकेले ज्ञान में निकले थे। तो ये हुआ कि सबने सोचा कि अगर हमारा कोई संबंधी जाएगा कानपुर बाबा को मिलने, तो गांव वालों ने ऐसा सोचा कि पता नहीं वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, उसको जादू लग जाएगा। तो सब लोगों ने सोचा कि इनको जाने नहीं देंगे। तो जो बहन ध्यान में गई थी, उसको हमारे पिताजी ने कहा कि अच्छा आप बाबा से पूछ करके आओ, बाबा को कहो कि हम सब आना चाहते हैं, लेकिन ये तो पूरा गांव जो है हमारे खिलाफ है और जाने के लिए रास्ता रोक रहे हैं, क्या किया जाए, आप कोई युक्ति बतलाइए। तो बाबा ने उस बहन के द्वारा मैसेज दिया कि आप जो है ट्रांसपोर्ट नहीं लेना जाते समय। रेलवे स्टेशन 5 कोस की दूरी पर था, तो बाबा ने कहा कि आपने ट्रेन से भी नहीं जाना है, कोई बस भी नहीं लेनी है और मेन रोड से भी नहीं जाना है। तो हमारे गांव में भागवत कथा हो रही थी और वो मुख्य रोड पर ही थी। तो बाबा ने कहा कि ये लोग जब रात को आरती में सभी इकट्ठे हो जाएंगे, आरती कर रहे होंगे, तब आप लोग जो है जाइएगा, लेकिन आपके गांव के पीछे 2 किलोमीटर की दूरी पर जंगल है, तो जंगल के रास्ते से निकलिएगा, सड़क से नहीं जाना। और आरती वाले जो पूरे गांव में गांव के इकट्ठा हुए थे, वो सोच रहे थे कि जब ये लोग यहां से जाएंगे तो इनको रोक लेंगे, लेकिन वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान बाबा, उसने ऐसी युक्ति बतलाई जो किसी के दिमाग में ही नहीं थी ये बात, और सब जंगल के रास्ते से पार हो करके आगे दूसरे गांव से ट्रेन लेकर के और वहां बाबा के पास पहुंच गए और बाबा सभी से मिले। और मिलने के टाइम वहां पर जो इंचार्ज बहन थी, उससे बाबा ने पूछा कि ये गांव वालों का प्रबंध कहाँ किया है ठहरने के लिए। तो उन्होंने कहा कि इनका कोई प्रबंध नहीं है, इनका तो पहले से मालूम नहीं था। तो बाबा ने बोला अच्छा वो एक कमिश्नर बच्चा आता है ना, उसको फोन लगाओ। तो एक भाई इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उस समय कानपुर में आते थे, तो बाबा को जब बाबा ने जब ये मैसेज दिया तो वो आए और आकर के बाबा को पूछने लगे कि बाबा आपने मुझे याद किया है, कोई सेवा है। तो बाबा ने कहा ये गांव वालों को अपने घर में रख लो। तो वो नीचे रहते थे और ऊपर उनका गेस्ट रूम खाली था, तो सभी को वो अपनी गाड़ी में ले जा करके और अपने घर में रखा। तो बाबा ने इतना बड़ा सम्मान दिया कि और लोग जो बाबा को मिलने के लिए आए थे वो तो धर्मशाला में ठहरे हुए थे, लेकिन गांव वालों को बाबा ने कमिश्नर का घर दिया। और लोग जो बाबा की मुरली सुनने के लिए आते थे धर्मशाला से, वो साइकिल रिक्शा में आते थे, और यहाँ कमिश्नर साहब जो हैं वो अपनी गाड़ी में, यानी कमिश्नर की गाड़ी में गांव वालों को मुरली क्लास करने के लिए ले आते थे। तो कई भाई बहने पूछते हैं, कहते भी हैं कि बाबा तो बहुत धनवान लोगों को जो है उनकी पालना करते हैं, उनको पूछते हैं, लेकिन यहाँ एक सच्चा जीता जागता उदाहरण है कि देखो बाबा ने गांव वालों को भी कमिश्नर का घर दिया, उनकी गाड़ी दिया आने जाने के लिए, और सम्मान से शॉल भी पहनाया। और हमारी लौकिक माता जी और बड़ी बहन जी भी बाबा के सामने बैठी हुई थी, तो वो जब वो गांव से निकली थी तो उनको आदत नहीं थी पैदल चलने की, लेकिन रात को जब वो पैदल चली तो उनके पांव में सूजन आ गई। तो बाबा ने जब देखा कि इनके पांव में सूजन है तो पूछा ये कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि बाबा ऐसे पैदल चलने से हो गया। तो बाबा स्वयं संदली से उठ करके, अपनी गद्दी से उठ करके और अपना रुमाल लेकर के और ऐसे सहलाया सभी को, बोला कि द्रौपदी ने आधा कलप पुकारा था भगवान को, अब भगवान आ गया है आप बच्चों का दुख हरने के लिए। तो इस प्रकार से बाबा ने इतना निर्माणता से जो है सभी के जहां पांव में सूजन थी उस रुमाल से, जैसे नहीं झाड़ा पोछ करते हैं झाड़ लग, इस प्रकार से बाबा ने ऐसे किया और दूसरे दिन सबका सूजन उतर गया। तो इस प्रकार से बाबा ने एक चमत्कार, मतलब जैसे कि कहें, सब लोग बाबा से मिले, मिल करके एक सप्ताह वहां रहे, और रहने के बाद जब वापस आने लगे तो बाबा सामने खड़े थे और सभी बाबा के सामने एक लाइन में खड़े थे। तो बाबा ने सबको दृष्टि टोली दिया और मेरे से जो बड़ी लौकिक बहन थी उसको बाबा ने कहा तुम किसकी बच्ची हो। तो उसने कहा बाबा मैं तो आपकी बच्ची हूं। साथ में पिताजी खड़े थे, उनको पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है। उन्होंने कहा कि आपकी बच्ची है तो मेरा कोई दूसरा ख्याल नहीं है। तो उस बहन को बाबा ने कहा कि इन लोगों को जाने दो, तुमको वापस नहीं जाना है, तुमको बाबा के पास रहना है। और लौकिक माता जी को कहा कि तुमको क्या बंधन है, तुम भी सेवा में निकलो। तो माता जी ने कहा ठीक है मैं अगले महीने सेवा में आ जाऊंगी। और बाबा ने उनको बता दिया कि तुमको बनारस सेवा में जाना है, तो बनारस सेवा में वो समर्पित हो गई। उनसे फिर एक और बड़ी बहन जो समर्पित हुई थी उनसे छोटी बहन को भी बाबा ने समर्पित करा दिया। तो मेरे से पहले लौकिक माता जी और दो बहनें समर्पित हो गई। तो मुझे भी कई बार ख्याल होता था कि मैं मधुबन में बाबा के पास जाऊं, मधुबन नहीं देखा है, और लोग अनुभव सुनाते थे कि मधुबन ऐसा है ऐसा है, वहां बहुत बड़ी गुफा है, पहाड़ी है, बाबा पहाड़ी पर जाते हैं। तो ये सुनकर के हमको ख्याल होता था कि मैं भी बाबा के पास जाऊं, लेकिन पिताजी मना करते थे। वो कहते थे अभी छोटे हो ना, देखो बाबा की मुरली में डायरेक्शन आता है कि बच्चों को जो है नहीं ले आना। तो ऐसे बोल के हमको चुप करा देते थे। तो कई बार मैं उनको कहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं लखनऊ से स्कूल की छुट्टी में अपने लौकिक घर गांव में गया हुआ था। तो उस दिन बाबा का लिखा हुआ पत्र हमारे पिताजी के पास आया, क्योंकि पिताजी कोई ना कोई समाचार बाबा को लिखते थे, तो बाबा से कुछ राय लेते थे तो बाबा उनको पत्र द्वारा राय सलाह देते थे। तो उस दिन बाबा का लिखा हुआ पत्र आया था। तो बाबा का पत्र वो सभी को सुना रहे थे, तो मेरे को और बहुत तेज इच्छा हुई, और मुझे भी योग में दो तीन अनुभव हुए थे। एक तो सूक्ष्म मतन का अनुभव हुआ था कि बाबा सूक्ष्म मतन में फरिश्ते स्वरूप में है। तो जैसे अभी जैसे बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में आप लोग देखते हैं, तो ऐसे ही सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म रूप मतलब बाबा का दिखाई दिया मुझे। तो वो भी अनुभव मैंने बाबा को लिखा। और एक दिन मैं योग में बैठा हुआ था तो मुझे क्या दिखाई दिया, आंखें खुली थी लेकिन योग में बैठे बैठे दिखाई दिया कि एक काला सा गोला ना हमारी तरफ आ रहा है और उसके पीछे पीछे शिव बाबा की लाइट आ रही है। तो उन दिनों में जिसको भी अनुभव होता था योग का तो वो सब सुनाते थे आपस में, तो मैंने भी सुनाया। तो ये सुन करके हमारे लौकिक पिताजी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ी ग्रहचारी आने वाली है। काला गोला आ रहा था मतलब बहुत बड़ी ग्रहचारी आएगी, लेकिन पीछे पीछे शिव बाबा आ रहे थे तो जरूर वो बचा लेंगे। तो ग्रहचारी इस प्रकार से थी कि लखनऊ में तो क्या है, घर नल में पानी मिल जाता था, लेकिन गांव में नल नहीं था पानी का, तो सब कुएं से पानी निकालते थे। तो कुएं में वहां पर बाल्टी रखी होती थी, उसमें रस्सी बंधी होती थी और सब उससे पानी निकालते थे। और मैंने कभी निकाला नहीं था कुएं से पानी। तो एक दिन मुझे ख्याल हुआ कि मैं पानी निकालूं। जैसे ही मैं पानी निकालने लगा, पता नहीं कैसे मैं कुएं में गिर गया। और कुएं में 30 फुट पानी था, तो वो जो रस्सी थी ना, अब मुझे तो ध्यान नहीं था, वो रस्सी मेरे हाथ में थी और मैं रस्सी को पकड़े हुए था, और ये भी मेरे को याद नहीं था कि मैं रस्सी पकड़ा हुआ हूं। तो किसी ने पानी में गिरने की आवाज सुनी, उसने आके कहा कि भाई रस्सी को पकड़े रहना। अब मेरे को तो समझ में नहीं आया कौन सी रस्सी पकड़े रहना है, जबकि मैं रस्सी को ही पकड़े हुए था। तो उसने लौकिक पिताजी को बताया, उन्होंने आके खींच के निकाल दिया। तो सबने कहा कि देखो तुम्हारे ऊपर ग्रहचारी आ रही थी और पीछे पीछे शिव बाबा आ रहे थे, तो शिव बाबा ने बचा लिया। तो ये भी मैंने अनुभव साकार में ब्रह्मा बाबा को लिखा। तो जब ब्रह्मा बाबा को यह अनुभव लिखा तो नीचे एक लाइन और लिख दिया मैंने अपने मर्जी से कि बाबा मैं तो आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आऊं। मुरली में भी आता है कि बच्चों को नहीं लाना है, सब मना करते हैं, और मैं अभी छोटा हूं तो कैसे आऊं आपके पास। तो जब वो बाबा के पास पत्र पहुंचा तो बाबा ने वो पत्र पढ़ा। एक पत्र मेरे नाम से लिखा और एक पत्र पिताजी के नाम से लिखा। और मेरे नाम से जो पत्र लिखा उसमें बाबा ने लिखा कि नूरे रत्नो पुरत याद प्यार बात समाचार कि शिव बच्चे का पत्र पाया, मन में खुशी हुई, बच्चा तो छोटा है लेकिन बाबा के पास आ सकते हैं। तो जब बाबा ने सिग्नल दे दिया तो सबके तरफ से सिग्नल मिल गया। लेकिन मैंने जो बाबा को लिखा कि मैं अभी छोटा हूं कैसे पहुंचूं, तो बाबा ने उस पत्र में लिखा था कि आपका प्रबंध, मनमोहिनी दीदी जी दिल्ली में रहती है वो प्रबंध कर देंगी। तो हमारे लौकिक पिताजी वो कानपुर तक पहुंचा गए थे, और कानपुर में उस समय हमारी लौकिक माताजी सेवा में थी, उस सेंटर पर वो पहुंचा दिया उन्होंने। वहां से एक बीके भाई जो रेलवे में सर्विस करते थे, उन्होंने हमें दिल्ली में पहुंचा दिया गुलजार दादी जी के पास, और उन्होंने बड़ी दीदी मनमोहनी जी से मिलवाया। उन्होंने पूछा, भाई तुम तो इतने छोटे हो, तुम कैसे जा रहे हो बाबू। तो मैंने बाबा का पत्र दिखा दिया। तो वो 3 बार तो बाबा का पत्र देखती थी और 3 बार मुझे देखने लगी। कहती है, पत्र तो बाबा का लिखा हुआ है लेकिन इतने छोटे को कैसे बुला लिया। फिर वहां से कोई भाई एक हफ्ते बाद मधुबन जा रहा था तो मधुबन हमको उनके साथ भेज दिया। और सुंदरलाल भाई हरिनगर वाले उस समय मधुबन में थे तो बाबा ने उनको भेजा पांडव भवन से, बोला बस स्टैंड पर जाओ और वो बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे हैं, उनको रिसीव करके लेके आओ। तो खास वो बस स्टैंड पर आए थे हम लोगों को रिसीव करने के लिए। और बाबा के पास पहुंच गए पांडव भवन मधुबन में। बाबा ने कहा आज बच्चे आए हैं तो आज बच्चों के साथ पिकनिक करेंगे। तो बड़ी खुशी हुई कि बाबा के साथ पिकनिक करने का भी सौभाग्य मिला। फिर बाबा पिकनिक के बाद एक खेल खेलने लगे तो सभी गोल घेरे में बैठे हुए थे, बाबा के पास नैपकिन थी और वो नैपकिन जो है बाबा ने चक्कर लगा करके मेरे पीछे छिपा दिया। तो मैंने थोड़ी देर के बाद देखा बाबा का हाथ तो खाली है, देखा तो मेरे ही पीछे है, तो ये खेल भी खेला। फिर बाद में बाबा ने बैडमिंटन खेल खेला सभी से, वो भी हमें सौभाग्य मिला खेलने का। तो ऐसे ही एक सप्ताह तक जहां भी बाबा जाते थे तो मैं बाबा के साथ जो है वो खेल मतलब घूमता रहता था। तो बाबा बगीचे में गए, जब बगीचे में गए तो मैं भी बाबा के साथ चला गया और बाबा फल तोड़ने लग गए और जब वो फल तोड़ते गए और मैं इकट्ठा करता गया टोकरी में। फिर बाद में मैं उसको बाबा के कमरे में रख दिया। फिर दूसरे दिन क्लास में कभी बाबा टोली पाड़ते थे, कभी किसी को बुला लेते थे, तो मेरे को भी एक सौभाग्य मिला कि बाबा ने मुझे कहा कि आओ बच्चे क्लास वालों को टोली बांटो, तो वो हमने टोली भी बांटा। फिर बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे देखो ये जो बगीचा है ना इसको पानी की जरूरत है, और उसमें पानी का नल नहीं था तो पास में कुआं था। तो जब वो हम कुएं से, बाबा ने कहा कि ये कुएं मतलब हैंडपंप था, हैंडपंप चलाओगे तो पानी निकलेगा। तो बाबा ने कहा जब हैंडपंप चलाओ ना तो आप याद रखना कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मैं इसी ख्याल में खो गया। तो जब थोड़ा सा ख्याल आया तो देखा कि बगीचे में 10-12 बंदर आ गए और जो आड़ू का झाड़ था जिसमें बड़े बड़े फल लगे थे, अंजीर था, तो वो बंदर जो है तोड़ के खा रहे हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा फल लगा हुआ था उस टहनी को भी तोड़ डाला बंदरों ने। तो बहुत नुकसान हो गया, उनको बड़ी मुश्किल से भगाया मैंने। शाम को मैंने जब बाबा को सुनाया कि बाबा ऐसे बंदर आए थे और वो तो फल खा गए, तो बाबा मुस्कुराने लग गए मेरी बात को सुन करके। कहने लगे बच्चे वो जो फल खा गए बंदर तो वो भी तो यहीं से खाएंगे ना, वो कोई बाजार से खरीद के थोड़ी खाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा ने हल्का कर दिया। फिर थोड़े और बड़े हुए तो बाबा ने अपने रूम की सेवा दिया, और रूम की सेवा फिर मम्मा ने देखा कि एक बालक आया हुआ है वो अपने रूम की सेवा बाबा के रूम की सेवा करता है, तो मुझे कहा कि तुम मेरे रूम की भी सेवा किया करो। तो मेरा ये सौभाग्य था कि जब बाबा नाश्ता करते थे अपने रूम में या कोई पार्टी बाबा को मिलने के लिए आती थी तो उनको टोली देते थे तो हमें भी मिल जाती थी, और जब बाबा नाश्ता करते थे तो मुझे बुला करके अपने हाथ से एक गिट्टी हमारे मुंह में भी खिला दिया करते थे। तो बहुत बाबा के समीप रहे, और कहते ना तुम्ही संग खाऊं तुम्ही संग खेलूं, हैं? तो भगवान के साथ खेलने का सौभाग्य मिला, खाने का सौभाग्य मिला, उनकी पालना लेने का भी सौभाग्य मिला। फिर थोड़ा और बड़े हुए तो एक दिन बाबा किचन में खड़े थे, मैं भी अचानक किचन में चला गया। तो बाबा ने कहा बच्चे रोटी पकानी आती है? मैंने कहा नहीं मुझे तो नहीं आती बाबा। फिर बाबा ने कहा सीखोगे? मैंने कहा हाँ जी। तो बाबा ने एक वरदान दिया था उस समय जब मैं मधुबन में आया था, तो लच्छू दादी को कहा था कि इसको बाबा के रूम की सेवा सिखाओ। तो उसने कहा बाबा अभी ये तो छोटा है। तो बाबा ने कहा ये बच्चा जो है सेवा में ना नहीं करेगा। कई लोग बहाना बना देते हैं ना, ये ना नहीं करेगा, इसको सिखाओ। तो ये बाबा का जैसे वरदान था हमारे लिए। तो बाबा ने जब पूछा रोटी पकाना सीखोगे, मैंने कहा हाँ जी। बाबा ने आधा घंटा खड़े होकर के रोटी पकाना हमको सिखलाया। एक माता रोटी बेल रही थी, आधे घंटे के बाद बाबा चले गए, चार पांच रोटी रह गई थी, तो उस माता ने मदद किया। और वो मेरा पहला दिन था जो आंख में आंसू आ गए, वो धुएं के कारण, लकड़ी का चूल्हा था। तो मैं किचन के बाहर आंख धुलाई कर रहा था, तो बाबा झूले पर बैठे थे। बाबा ने फिर बुला लिया और मुझे अपने साथ झूले पर बिठा लिया। सामने घड़ी थी, 50 मिनट तक मैं बाबा के साथ झूला झूलता रहा। बाबा तो लंबे थे, वो पांव से झूला को झुलाते रहते थे और मैं झूलता रहता था। तो फिर बाबा ने कहा कि जो बच्चे बाबा को सेवा में हाँ जी करते हैं और हाँ जी कह के सेवा में लग जाते हैं, वो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। तो मैं तो इतना समझा नहीं इस बात को। इतने में भोली दादी आ गई किचन से। उसने एक्सप्लेन किया कि तुमने जो बाबा को रोटी पकाने के लिए हाँ जी किया, तो इसलिए बाबा ने कहा कि हाँ जी करने वाले और जो दिल से सेवा करते हैं वो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। फिर बाबा ने कहा थोड़ी देर के बाद कि किसके साथ झूला झूल रहे हो बच्चे। मैंने कहा बाबा मैं तो शिव बाबा के साथ झूला झूल रहा हूँ। तो बाबा ने कहा हाँ बहुत अच्छा, ठीक उत्तर दिया। फिर इसके बाद फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जो बच्चे चार्ट लिख करके बाबा को दिखाते हैं ना, तो बाबा जो है उनको मदद करता है। तो मैंने बाबा को चार्ट लिख करके दिखलाया। तो एक बार बाबा बॉम्बे गए और एक बार दिल्ली गए, तो मुझे अपने साथ लेकर के गए, दिल्ली भी और बॉम्बे भी। तो जब बाबा बॉम्बे लेके जा रहे थे ट्रेन में, तो बाबा का स्टाफ बाबा के साथ बैठा हुआ था। तो जैसे नहीं आज की मुरली में भी था ना कि अगर ये बाबा ट्रेन में बैठा होगा तो कौन पहचानेगा। तो बाबा के साथ बाबा के बच्चे बैठे थे, तो आपस में चिटचैट कर रहे थे। कह रहे थे बाबा आपने तो एक ही टिकट लिया है ना, आपके तो अंदर शिव बाबा भी है, तो यात्रा तो दो जने कर रहे हैं, टिकट तो एक ही है। तो ऐसे हंसी गुटी कर रहे थे बाबा के साथ। फिर बाबा जब बॉम्बे गए तो मुझे बॉम्बे में एक हैंगिंग गार्डन है वहां पर लेके गए और वहां लॉन्ग बूट दिखलाया। बाबा ने बोला कि देखो ये लॉन्ग बूट है। ये लॉन्ग बूट में मैंने देखा बच्चे अंदर जाते थे फिर बाहर निकल आते थे। तो बाबा ने कहा कि देखो ये ब्रह्मा बाबा जो है ना, ये शिव बाबा का लॉन्ग बूट है। इस प्रकार से बाबा इतनी निर्माणता से अपने आप को लॉन्ग बूट कह करके, जैसे कि इतनी निर्माणता बाबा ने दिखलाई। और जब बाबा दिल्ली जा रहे थे तो मुझे भी दिल्ली लेके गए। तो दिल्ली जाते समय 2 बजे ट्रेन में बाबा योग में बैठ गए। ऐसे तो मधुबन में बैठते थे बाबा और मम्मा, लेकिन बाबा ट्रेन में भी बैठ गए 2 बजे। और उस समय ट्रेन में विश्व किशोर दादा साथ में थे, तो उन्होंने बाबा को पूछा कि बाबा ऐसी क्या जरूरी काम पड़ गया जो आप 2 बजे उठ के बैठ गए। बोला मैं शिव बाबा को याद कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बाबा आपका बुजुर्ग तन है, आपने दिन में भी रेस्ट नहीं किया है और आप कल दिल्ली पहुंचेंगे, सब बच्चे आए हुए होंगे, मिलेंगे, तो थोड़ा आप रेस्ट कर लीजिए। तो बाबा ने कहा नहीं, ये मेरा तो आलमाइटी बाबा से जो है ना टाइम अपॉइंटमेंट है। तुम कल एक मिनिस्टर को मिलने के लिए गए थे और उसने जो टाइम दिया उससे पहले पहुंच गए तुम। हमारा तो सुप्रीम मिनिस्टर जो है ना वो शिव बाबा है, उसने हमको जो टाइम दिया है, मैं उस समय बाबा की याद में बैठ गए बाबा। बाद में बाबा ने राज बतलाया। एक बांदेली माता ने बाबा को पत्र लिखा था कि पति ने मुझे बहुत मारा है, वो ज्ञान में नहीं चलता था, एंटी था। तो माता क्या करती थी, जब उसका पति नौकरी में चला जाता था तो सेंटर से मुरली मंगा के वो पढ़ती थी। एक दिन उसका पति अचानक आ गया होगा, उसने देख लिया तो उसको मार पड़ी। तो उसने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा आज मुझे जो है बहुत मार पड़ी है, पूरा शरीर दुख रहा है। तो बाबा ने उस माता को 2 बजे उठ करके ट्रेन में जो तपस्या कर रहे थे ना बाबा, उसको योग का साकाश दे रहे थे। और उधर वो माता सो रही थी, तो सोते सोते उसने सपने में देखा कि बाबा मेरे सामने खड़े हैं और मेरे माथे पर हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्ची तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। फिर उसने बाबा को पत्र लिखा, तो बाबा ने वो पत्र दिखलाया कि देखो इसको बाबा ने इस तारीख को योग की शक्ति दी थी और इसी तारीख का लिखा हुआ पत्र है। तो बाबा ने कहा कि देखो ऐसे आप बच्चे भी अंतवाहक शरीर के द्वारा सूक्ष्म रूप से मनसा सेवा करो और दुखी आत्माओं को भी उनको साकाश दो, तो ऐसे सेवा हो जाएगी। मैं भी पूरा करने वाला हूं, मेरे ख्याल से टाइम हो गया, एक बात और सुना के पूरा करता हूं। बाबा के पास 2 बच्चे आए थे बाबा को मिलने के लिए, दोनों अलग अलग टाइम पर आए थे। एक बच्चा आया, उसके पास चिट्ठी नहीं थी, तो बाबा ने कहा कि देखो ये बच्चा जो है ना चिट्ठी के बिना आया है, नियम यही कहता है कि टीचर की चिट्ठी लेके आए। तो बाबा ने कहा कि मैं इस बच्चे से तो नहीं मिलूंगा। तो उस बच्चे ने मैसेज दिलवाया कि मैं तो पूरा दिन खाना नहीं खाया हूं और पूरा नियम का पालन किया हूं, बाजार का कुछ नहीं खाया हूं, भूखा हूं। तो बाबा ने कहा बच्चा तो मेरा है, उसको खाना खिलाओ। तो उसको खाना भी मैंने ही जा करके दिया था, उस दिन पालक की सब्जी और रोटी बनी हुई थी, तो मैंने जा करके उसको दिया भोजन। फिर उसने मुझे कहा कि बाबा तो कहते हैं कि तुम वापस जाओ, यहाँ नहीं रह सकते हो, चिट्ठी नहीं लाए हो, मेरे पास तो किराया भी नहीं है जाने का, मैं तो बड़ी मुश्किल से किराया जोड़ करके आया था। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा वो तो कहता है कि मेरे पास किराया नहीं जाने का। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा तो मेरा ही है ना, बाबा उसको किराया भी देगा लेकिन बाबा नहीं मिलेगा। तो बाबा ने उसको खाना भी खिलाया, किराया भी दिया। और एक बच्चा और भी आया कुछ दिन के बाद, वो भी चिट्ठी नहीं लाया था और वो बच्चा दिल्ली से आया था, ये हरियाणा से आया था पहले वाला। तो जो बच्चा दिल्ली से आया था उसने वो नया नया था बिल्कुल, 10-12 दिन हुआ था उसको ज्ञान में चलते हुए। तो उसने मुरली में सुना कि बाबा ने कहा है कि जो निश्चय बुद्धि बच्चा होगा वो बाबा से मिले बिना रह नहीं सकता है, वो चटक पड़ेगा बिल्कुल। उसने जब मुरली में ये सुना तो किसी को बताया नहीं और सीधा चला आया रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन आके स्टेशन मास्टर को कहता है कि मुझे मधुबन जाना है, मधुबन की टिकट दे दो। स्टेशन मास्टर ने कहा कि मधुबन कौन सा मधुबन, एक तो मधुबन ये वृंदावन मथुरा इसको मधुबन कहते हैं, एक करनाल में कोई जगह है उसको भी मधुबन कहते हैं, तुम्हें कौन से मधुबन में जाना है। अब उसको तो मालूम नहीं था कि मधुबन कहाँ है, माउंट आबू में मधुबन है उसको मालूम नहीं था, नया नया था वो। तो उसने कहा, उसने अभी नया नया था तो उसने कहा कि जहां ब्रह्म कुमारियां जाती है ना वहां जाऊंगा। अब वो नया था तो उसको ब्रह्मा कुमारी बोलना भी नहीं आया, तो स्टेशन मास्टर तो समझ गए। उसने कहा वो तो माउंट आबू है, आबू रोड है, बोला वहां की टिकट दे दो। उसको टिकट दे दिया, वो मधुबन में पहुंच गया किसी तरह से। अब वहां जब बहनों को मालूम पड़ा कि ये भी बिना चिट्ठी आया है, तो बाबा को मैसेज दिया कि बाबा ऐसे ऐसे एक बच्चा आया है और उसका नाम भी बतलाया। तो बाबा ने कहा कि उसको बुलाओ। तो बहनें थोड़ा धीरे धीरे जाती ना बाहर गेट तक, पैदल चल के जब जाने लगी तो थोड़ा टाइम लग गया। तो बाबा ने देखा कि अभी तक कोई आया नहीं, तो बाबा खुद बाहर गए और जा करके उस बच्चे को रिसीव किया और उसको गले लगाया और कहा कि बच्चे, तुम्हारे पिछले पुण्य कर्मों का फल आज मिल रहा है तुमको। अब बाबा तो अंतर्जामी, सब बातें बाबा जानते हैं, बाबा तो हर एक के जन्मों को भी जानते हैं। और बाबा ने कहा कि तुमने बाबा के बहुत मंदिर बनवाए हैं, और ये जो रामेश्वरम में रामेश्वरम मंदिर है ना, वो भी बाबा ने कहा कि वो भी तुमने किसी जन्म में बनवाए थे। तो बाबा ने देखो, हर एक के कर्मों का जो फल है बाबा जानते हैं, तो उसके इतने पुण्य कर्म थे कि बाबा कहने लगे कि तुम्हारे पुण्य कर्मों का फल जो है तुम्हें मिल रहा है। तो बाबा के पास हम सेवा किए, बाद में जब दिल्ली का पांडव भवन खुला तो गुलजार दादी फिर यहाँ से हमें सेवा में लेके गई, तब से फिर मैं वहीं सेवा में हूँ। ओम शांति। सॉरी, मैं समझा कि शायद 11 बजे तक सुनाना है, तो 11:30 तक है। ठीक है, थोड़ा और सुना देते हैं। जी हाँ, थैंक यू बाबा को भी और आपको भी। तो हमारी जो सेवा थी ना, वो बाबा के रूम की सेवा थी। तो कई पार्टियां बाबा के कमरे में आती थी, बाबा को मिलती थी, तो उसमें ज्यादा बड़ी पार्टी नहीं आती थी। 5-6 लोग आ गए, या बहुत 10 लोग आ गए तो समझ लो बहुत ज्यादा हो गया। तो उसके बाद कभी थोड़े ज्यादा भी आ जाते थे तो बाबा टेंट लगवा देते थे। तो एक पार्टी आई बाबा के पास, टीचर बहन जो है वो पार्टी ले आई, उसमें 2 भाई थे और 3-4 बहनें थी। तो बाबा के पास आई कमरे में, कहने लगी कि बाबा मैं पार्टी को ले आऊं मिलाने के लिए। तो बाबा ने बोला हाँ ले आइए। तो टीचर बहन ने बाबा को कहा कि बाबा उसमें ना 2 भाई हैं, एक भाई तो बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी है, कहना मानता है टीचर का, सब जो कोई सेवा बताओ सब करता है, लेकिन जो दूसरा भाई है ना वो कहना नहीं मानता है, अपनी मर्जी से सेवा करेगा, कभी नहीं करेगा, ना कर देगा, तो आप उसको थोड़ा समझाओगे तो वो कहना मानेगा। तो बाबा तो मुस्कुरा रहे थे। फिर टीचर बहन ले आई बाबा के पास, तो बाबा ने कहा कि जब भी कोई पार्टी आती थी ना तो बाबा सबसे पहले उनको कहते थे कि आज की मुरली सुनी है, तो जाओ मुरली सुनो आज की। तो टीचर बहन जब आई थी बाबा को पूछने के लिए, तो उसको भी बाबा ने कहा कि मुरली सुना है, तो उस बहन ने कहा मैंने तो सुना है लेकिन पार्टी में 2-3 लोगों ने नहीं सुना है। वो तैयार हो रहे थे तो बाबा ने कहा पहले मुरली सुनो। तो उन मुरली सुनने के बाद फिर वो आए बाबा के कमरे में और बाबा ने हालचाल पूछा और बहुत सने से सबको टोली भी दिया, और जो कुछ उनके लिए वरदान बाबा ने देना था वो वरदान भी दिया बाबा ने। तो टीचर बहन ने, वो थोड़ा पीछे बैठी थी, उसने बाबा को इशारा कर दिया कि बाबा वो बच्चा है, तो ताकि उसको बाबा कुछ समझाएं, बाबा ने कुछ समझाया नहीं था उसको। तो जिसके लिए टीचर बहन ने इशारा किया, बाबा ने उसकी बहुत महिमा किया। तो टीचर बहन ने सोचा कि शायद बाबा मेरी बात को समझ नहीं पाए होंगे, महिमा तो दूसरे की करनी चाहिए थी, मैंने तो इशारा दिया कि उसको समझाओ और बाबा उसकी खूब महिमा कर रहे हैं, और महिमा करते करते बाबा ने यहां तक कह दिया कि ये मेरा जो है ना सच्चा बच्चा है, दिल पर चढ़ने वाला बच्चा है, सर्विसेबल बच्चा है। और सब जो पार्टी बैठी थी वो अंदर अंदर जो है ना सुन के हंस रही थी अंदर अंदर, और टीचर बहन सोच रही थी कि बाबा तो ये तो उल्टा हो गया। सब मिलके चले गए, टीचर बहन किसी कार्य से बाबा के पास बैठी थी। फिर बाबा से कुछ डायरेक्शन लेना था, वो ले लिया। लेने के बाद टीचर बहन ने बाबा को कहा कि बाबा आप भूल गए क्या, महिमा तो जिसकी करनी थी उसकी तो की नहीं, जिसकी जिसको समझाना था उसकी आपने बहुत महिमा कर दी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, शिव बाबा अंतर्जामी भी है ना, वो बच्चों को जानता है, आप बच्चे जो है वो बाहर जामी हो, बाहर का रूप देख करके आप समझते हो, उसकी एक्टिविटी को देख करके समझोगे कि भाई ये तो ऐसा है वैसा है, आज्ञाकारी नहीं है। लेकिन बाबा को मालूम है ना कि कौन सा बच्चा कब सेवा में निकलेगा, तो वो बच्चा जो है कुछ दिन के बाद बहुत अच्छी सेवा करेगा और वो बहुत आज्ञाकारी बच्चा होगा, बहुत फेथफुल बच्चा होगा। और बाबा ने उनको ये भी कहा कि ये बच्चा दूसरा भले आज्ञाकारी है, सेवा करने वाला है, लेकिन आगे चल करके आगे भविष्य में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो अंदर घुसना चाहेंगे, जैसे कि सीआईडी के तौर पर आएंगे या आपका भेद लेने के लिए आएंगे, वो भी आपका आज्ञाकारी बनेंगे, हाँ में हाँ मिलाएंगे, हाँ जी करेंगे, लेकिन जितना आप बाबा की याद में रहोगे और बाबा की याद में रह करके उनसे जो बात करोगे ना तो टचिंग होगी, और उनसे संभाल रखना कि ये जो है भेद लेने के लिए आए हुए हैं, ये अंदर घुसने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसे बच्चे भी कई होंगे आएंगे ऐसे भविष्य में, तो उनके लिए परखने की शक्ति बहुत जरूरी है, ये ब्रह्मा बाबा ने उस टीचर बहन को बतलाया। फिर शाम के टाइम वही बच्चा चक्कर लगा रहा था, तो थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि बाबा अपने कमरे से निकल करके आ रहे हैं और अकेले हैं, तो बाबा के पास चला गया और उस बच्चे ने बाबा को कहा कि बाबा आपने तो मेरी बहुत महिमा किया, लेकिन मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। उसने सच्चे दिल से बाबा को जो है अपनी कमी सुना दिया। तो जब बाबा को सच्चे दिल से अपनी कमी सुनाई तो वो कमी जैसे कि उसके अंदर से निकल गई, जैसे किसी घड़े में गंदा पानी हो ना और उसको गिरा दिया जाए तो साफ पानी भर जाएगा, तभी हम साफ पानी भर सकते हैं। तो उसके अंदर से कमियां निकल गई, तो जो बाबा ने महिमा किया था, जो उसकी विशेषता बतलाई थी, जो वरदान दिया था उसको, वो उसके अंदर समा गया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमने सच्चे दिल से जो बाबा को अपनी कमी सुनाई ना, तो वो कमी अब निकल गई और सच्चे दिल पर साहब राजी। तो साहब जो है, शिव बाबा जो है वो राजी है। तो इस प्रकार से बाबा ने एक वरदान दिया उसको। वरदान क्यों मिला? क्योंकि सच्चा दिल से उसने बाबा को सुनाया। फिर कुछ दिन के बाद थोड़े हम और बड़े हुए, तो जो भी पार्टियां आती थी ना मधुबन में, तो बाबा क्या करते थे, रात्रि को क्लास के बाद उनको ना किचन में ले जाते थे और अपने हाथ से एक एक गिलास दूध देते थे। कहते थे बाबा कहते थे कि बच्चे, मीठे बच्चे, दूध पियो, बाबा के घर में आए हो ना, तो बाबा के हाथ से दूध लो। तो सभी दूध पीते थे। फिर एक दिन बाबा ने कहा, वो दूध जो है माउंट आबू के गांव से आता था, और दादा विश्वतन जी जो है वो दूध लेते थे गांव वालों से। एक दिन बाबा ने कहा कि पता करो कि इस दूध में पानी कितना होता है। तो दादा विश्वतन जी ने लैक्टोमीटर मंगवाया और उसको दूध में नापा, तो जो 5 किलो वाला केन था दूध का, तो उसमें जब नापा तो मालूम पड़ा कि 5 लीटर जो दूध है उसमें 0.5 लीटर पानी है। अब 0.5 लीटर तो आज के हिसाब से कुछ भी नहीं है, शुद्ध दूध है, लेकिन बाबा ने कहा कि इसमें 0.5 लीटर जो पानी है ना, इसका मतलब तो ये प्योर नहीं हुआ ना, भले 0.5 लीटर ही है पानी, ज्यादा नहीं है। तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को प्योर दूध पिलाना चाहते हैं, एकदम प्योर। अब प्योर दूध तो घर की गाय का ही हो सकता है। तो बाबा ने पहले 6 गाय मंगवाई, बाद में 2 और मंगवाए, टोटल 8 गाय मंगवाई, और उसको संभालने के लिए एक ग्वाला रख दिया। तो ग्वाला रोज निकालता था, 3-4 महीना उसने सेवा किया, 3 महीना लगभग। तो उसको किसी ने, मतलब उसके मन में ये बात भर दिया कि बाबा के पास जो है ना बहुत पैसा है, देखो हिस्ट्री हाल बन रहा है, दूसरे कमरे बन रहे हैं, है? तो बाबा के पास जरूर बहुत पैसा आता होगा, तो तुम बाबा से 100 रुपया महीना मांगोगे ना, तो बाबा तुमको 100 रुपया देंगे। और बाबा के पास तो ऐसा कोई भाई बहन है नहीं जो गौशाला संभाल सके, क्योंकि जब मैं मधुबन में आया था तो मेरे से पहले कोई भाई नहीं था, मैं पहला कुमार समर्पित हुआ हूं मधुबन में। बाबा सिंध से आए थे, तो सिंध से 3-4 भाई थे जिनको हम दादा कहते हैं, चंद्रहास दादा, विश्वतन दादा, विश्व किशोर दादा, जो बाबा के भतीजे भी थे और यज्ञ के मैनेजर भी थे। तो यही 3-4 भाई थे और थोड़ा बुजुर्ग भी थे। तो उसके मन में आया कि यहाँ तो माताएं हैं भंडारे में काम करने वाली, भोली दादी, भूरी दादी, ये सब, तो कोई इनमें तो संभालने वाला तो है नहीं। तो उसको ये था कि हमें 100 रुपया जरूर मिलेगा। और बाबा ने मुझे कहा था कि बच्चे गौशाला में 3-4 चक्कर लगा लिया करो। मुझे कुछ आता नहीं था भाई, वो ग्वाला कहीं अपना टाइम ना वेस्ट करे, वो देखेगा कोई हमें वाच कर रहा है, थोड़ा सा सेवा में लगा रहेगा। तो उस समय जो लेबर रेट थी ना मजदूरी, वो 1.5 रुपया रोज का था, उसको 2 रुपया देते थे कि भाई चलो थोड़ा एक्स्ट्रा काम करता है, गायों की सेवा करता है, तो उसको 2 रुपया रोज का देते थे, यानी 60 रुपया महीना देते थे। तो मैंने बतलाया विश्व किशोर दादाजी को, जो मैनेजर थे, उन्होंने उसको कहा कि भाई मैं तुम्हारा 5 रुपया तो इमीडिएट बढ़ा देता हूं। उस जमाने में आज से 60 साल पहले 5 रुपए की बहुत वैल्यू थी। तो बाकी हर महीने तुम्हारा थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहेंगे। तो दादा को तो उसने कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन मुझे कहता है कि आज तो 2 तारीख हो गई है, कल 1 तारीख थी, हमको 65 रुपया तो मिल गया, 5 रुपया एक्स्ट्रा, लेकिन कल से मैं नहीं आऊंगा, अगर 100 रुपया देना हो तो मुझे बुला लेना, मेरा घर तो देखा ही हुआ है आप लोगों ने, मैंने दादाजी को बता दिया। अब ये बात पूरे मधुबन में फैल गई कि कल से दूध कौन निकालेगा। और उस समय जो दूध मिलता था ना 8 गायों का, तो एक गाय का एक टाइम का 6 लीटर दूध मिलता था, तो 8 गाय का 45 तो आराम से मिल जाता था एक टाइम का, दोनों टाइम का मिला करके 90 लीटर बन जाता था। बाबा मक्खन भी निकलवाते थे, मक्खन रोटी खिलवाते थे, रोटी को सिंधी में मानी कहते हैं, तो बाबा मक्खन मानी खिलाते थे सभी बच्चों को, दूध भी देते थे, हर प्रकार से दूध की सब्जियां भी बनवाते थे। तो अब ये सब आवाज फैल गया, बाबा को भी पता लगा कि कल से वो नहीं आएगा। तो बाबा ऐसे लॉन में चक्कर लगा रहे थे, तो बाबा को देख करके मैं भी बाबा के पास चला गया। तो बाबा ने उस दिन मुझे विशेष दृष्टि दिया, दृष्टि तो रोज ही देते थे, लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई बाबा हमको कुछ पावर भर रहे हैं दृष्टि दे करके। फिर बाबा ने मेरे से पूछा कि बच्चे गायों की सेवा करोगे? अब मुझे तो आता नहीं था, थोड़ा बहुत देखता जरूर था। तो मैंने बोला क्यों नहीं। तो बाबा थोड़ा रमणीक भी थे और रमणीकता में ही शिक्षा भी दे देते थे। तो बाबा ने कहा बच्चे, मीठे बच्चे, तुमने बाबा को क्या कह दिया? मैंने कहा क्यों नहीं। तो बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि बच्चे, तुमने बाबा को क्यों कहा और साथ में नहीं भी लगा दिया, क्यों नहीं मैंने कहा ना। तो अब मैं तो समझ नहीं पाया एकदम से कि क्या बात हो गई। तो बाबा ने बतलाया कि कहना चाहिए जी हाँ जरूर करेंगे। तो ये भी एक बाबा ने मतलब भाषा की शुद्धता कहे या हमें कैसे बतलाना है क्यों नहीं, शब्द तो बाहर वालों का है, बाबा ने कहा कि हम कहना चाहिए जी हाँ जरूर करेंगे। तो ये भी बाबा ने ही सिखलाया। फिर बाबा ने कहा बच्चे 8 घंटा तो खुशी खुशी से सेवा करोगे ना, क्योंकि गायों की सेवा तो थोड़ी लंबी होती है, सुबह से लेकर रात तक होती है। तो मैंने कहा हाँ जी बाबा जरूर करेंगे, क्योंकि बाबा ने ही कहा कि जी हाँ कहना चाहिए, तो सीख लिया था। तो वो पहले दिन जब मैं दूध निकालने के लिए बैठा, तो जो 45 लीटर एक टाइम का निकलता था ना, तो केवल 5 लीटर निकला मेरे से, कभी निकाला नहीं था। और वो 5 लीटर की बाल्टी थी ना, इसलिए वो 5 लीटर की बाल्टी भरी हुई दिख रही थी। 8 गायों का दूध 5 लीटर मिला। बाबा को मालूम पड़ा तो बाबा किचन में आए, बोला गौशाला से दूध आया है, तो बाबा देखने के लिए आए। तो बाबा ने जब देखा वो दूध, तो बाबा ने कहा कि ये बच्चा तो बाल्टी भर के दूध लाया है। अब बाबा ने ये और लोगों ने जो देखा उन्होंने कहा ये तो 45 तो घाटा कर दिया, और बाबा ने कहा ये बच्चा तो बाल्टी भर के दूध लाया है। ऐसा बाबा ने उमंग उत्साह, मतलब बाबा हर बात को पॉजिटिव देखते थे, कभी उन्होंने नेगेटिव देखा ही नहीं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव बाबा देखते थे। तो ऐसा उमंग उत्साह दिया कि जो मैंने मन में सोचा था कि बाबा पता नहीं क्या कहेंगे, वो तो हम इतनी खुशी में झूमने लग गए कि बाबा ने कहा बच्चा तो बाल्टी भर के दूध लाया है। फिर एक हफ्ते के अंदर बाबा की ऐसी मदद थी कि ग्वाले जितना निकलने लगा, जैसे ग्वाला निकालता था ना ऐसे निकलने लगा दूध। और फिर मुझे एक मजदूर मिल गया थोड़ा गायों की सेवा के लिए, वो चारा वगैरह घास डाल देता था गायों को। फिर एक हफ्ते के बाद मेरे बाल्टी भर के जो दूध निकला, बड़ी बड़ी बाल्टी, तो वो मैं उठा करके दोनों हाथ में बाल्टी ले करके और इसी खुशी से जा रहा था कि उस दिन तो बाबा ने कहा बच्चा बाल्टी भर के दूध लाया, आज बाबा शायद बहुत महिमा करेगा है। लेकिन क्या हुआ, वो गौशाला थोड़ा पहाड़ी एरिया पर थी, वहां स्टोन डस्ट पड़े हुए थे, वो रेत होता ना पहाड़ी रेत, बजरी बोलते हैं उसको। अब मेरा ध्यान तो उस रेत पर नहीं गया और रेत पर पांव पड़ा, दोनों बाल्टी गिर गई, मैं भी गिर गया, दूध भी गिर गया। मैंने कहा ये तो आज बड़ा गड़बड़ हो गया। बाबा के कमरे के बाहर संतरी दादी बैठी थी, मैंने उनको कहा कि ऐसे दूध गिर गया है, आप बाबा को बता दीजिएगा। मतलब मुझे संकोच हो रहा था कि मैं बाबा के पास कैसे जाऊं, तो संतरी दादी ने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुमको ही जाना पड़ेगा। अब मैं सोचा अब क्या करूं, कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं। तो जैसे ही मैंने बाबा के कमरे में पांव रखा, बाबा चारपाई पर बैठे हुए थे, बाबा ने मेरे को देखा और बाबा ने कहा बच्चे कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ बच्चे? तो मैंने कहा बाबा ऐसे दूध गिर गया। तो बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बच्चे ये तो कुछ नहीं हुआ, बड़ा बड़ा हवाई जहाज गिर जाता है, बड़ा बड़ा एरोप्लेन गिर जाता है, बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, ये तो कुछ नहीं हुआ। अरे बाबा ने ऐसे हल्का कर दिया कि और लोग जो मिलते थे ना भाई बहने, वो तो कहते थे आज गया काम से, आज दूध नहीं मिलेगा है? और बाबा ने ऐसा हल्का कर दिया, ऐसा हल्का कर दिया कि कमाल है बाबा की, ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। फिर एक दिन वो जो लेबर हमें मिला हुआ था ना, वो दिन छुट्टी पर चला गया, वो आया नहीं, तो गाय को घुमाने के लिए मुझे ही ले जाना पड़ा। तो मैं लेके जा रहा था तो माउंट आबू के पास, वहां नजदीक में आगे एक सनसेट पॉइंट है, अनादरा पॉइंट कहते हैं उसको, वहां हम लेके गए गाय को। जब बाबा को मालूम पड़ा कि ये ले जा रहा है घुमाने के लिए, तो एक इतना बड़ा टिफिन टोलियों का बाबा ने भर के दे दिया, बोला वहां भूख लगेगी ना तो ये तुम खाते रहना। तो ऐसे बाबा ध्यान रखते थे। तो बाबा को जो हाँ जी कहते थे ना, वो बाबा को बहुत अच्छे लगते थे। तो एक भाई आया सेवा में, तो एक महीने की सेवा में आया और वो यंग था, हट्टा कट्टा था, तो बाबा ने उसको मेरे पास भेजा गौशाला में, बोला कि जाओ देखो वहां कुछ सेवा हो तो करो। तो वो भाई किसी गांव से आया था, मेरे पास आया, कहने लगा कोई सेवा है, बाबा ने यहां भेजा है मुझे। तो मैंने कहा ये मशीन है, इसमें चारा काटते हैं, तो आप काट सकेंगे? तो कहता मैं तो अपने गांव में भी काटता था, मैं तो मशीन में चारा काट लूंगा। वो रोज चारा काटता था, एक महीने के लिए आया था, लगभग डेढ़ महीना वो रहा और रोज वो सेवा करता था, उसके सिवाय और भी कई सेवाएं करता था। फिर डेढ़ महीने के बाद वो बाबा के पास गया और बाबा को कहने लगा बाबा मैं वापस जाना चाहता हूं। तो बाबा ने कहा क्यों जाना चाहते हो बच्चे, तुम यहीं रहो बाबा के घर में, बाबा तुमको ऑफर कर रहे हैं, बाबा के पास रहो और सेवा करो। तो उसने कहा कि बाबा मेरे ऊपर कर्जा है, मैं और थोड़ी सी जमीन है मेरे पास, खेती करके मैं कर्जा उतारना चाहता हूं। तो बाबा ने उसको कहा कि बच्चे तुम यहीं रहो बाबा के पास सेवा करो, बाबा बैठा है, बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा बाबा मतलब शिव बाबा, बाबा बैठा है, वो तुमको जो है कर्जा से मुक्त कर देगा, वो अपने आप कर्जा उतार देगा, तुम यहीं रहो। बाबा को तो उसने कुछ नहीं बोला, मेरे पास आया, कहता है बाबा ने ऐसे ऐसे कहा है, तो क्या बाबा यहां से पैसा भेजेगा? मैंने कहा ये तो तुम बाबा से पूछ लेते थे, अब मुझे क्या मालूम। तो फिर मुझे कहने लगा कि कर्जा तो मेरा है, मैं बाबा से क्यों चुकतू कराऊं, मैं हर साल आता हूं सेवा में, अभी जाऊंगा कर्जा चुकतू करके फिर मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा भाई वो तो तुम जानो, लेकिन बाबा ने कहा है तो श्रीमत तो यही है कि तुमको रुकना चाहिए। वो रुका नहीं और वो चला गया, चला गया। वहां रोज क्लास कर रहा था, एक महीने भर क्लास किया, उसके बाद वो क्लास में नहीं आया। तो टीचर बहन को संकल्प हुआ कि क्यों नहीं आया। उसी रात को टीचर को सपने में आया, वो भाई सपने में कहता है टीचर बहन को कि मुझे भोग खिलाओ, मुझे भूख लगी है। जब टीचर बहन ने मालूम कराया कि वो भाई क्यों नहीं आ रहा है मालूम करो, तो उसके घर में तो ताला लगा हुआ था, लेकिन पड़ोस वालों ने बतलाया कि इसकी जो बॉडी है ना वो रेलवे लाइन पर पुलिस को मिली है। तो देखो यहां बाबा उसको भाग्य बांट रहे थे, बाबा की श्रीमत थी कि तुम जो है यहीं रहो और तुम्हारा कर्जा चुकतू हो जाएगा, लेकिन बाबा की श्रीमत को नहीं माना तो देखो जन्म जन्मांतर का भाग्य खत्म हो गया। तो एक भाई और भी आया सेवा में ऐसे ही, वो मिलिट्री में था, और मिलिट्री वाला भाई जब सेवा में आया तो उसको भी बाबा ने मेरे पास भेजा, और वो भी घास काटता था। तो उसने रोज बाबा को मिलता था वो भाई, तो उसने बाबा को कहा कि बाबा मैं तो सेवा करना चाहता हूं, हमको छुट्टी नहीं मिलती है। तो बाबा ने बोला बच्चे तुम सेवा करना चाहते हो ना, तुमको छुट्टी मिल जाएगी, तुम सेवा करो। उसको भी बाबा ने सेवा करने के लिए छुट्टी दे दिया। तो उसने कहा कि बाबा जो मेरा ऑफिसर है ना मिलिट्री में वो छुट्टी नहीं देता है। तो बाबा ने उसको सलाह दिया कि तुम उसको लिख दो अपने ऑफिसर को कि मैं पहाड़ों में तपस्या कर रहा हूं और गुफाओं में कंदराओं में तपस्या करके शांति की खोज कर रहा हूं, तो अपने ऑफिसर को ऐसे लिख दो। उसने लिख दिया और वो मधुबन में अपना सेवा करता रहा। बाबा की जो यही चार शब्द थे उसने ऐसे लिख दिया, उसने ये नहीं लिखा कि मैं माउंट आबू में हूं, बस लिख दिया मैं पहाड़ों में तपस्या कर रहा हूं। मिलिट्री वाले उसके घर में गए, उसकी लौकिक माता से पूछा वो कहाँ है। उन्होंने कहा वो तो यहां दो दिन रह के चला गया था, मालूम नहीं कहाँ है। तो देखो बाबा की श्रीमत से उसकी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। और वो भाई जो है, मैं बहुत से भाई बहने जानते होंगे उनको, वो भाई उसका नाम भोपाल भाई था, वो यहाँ दादी शांतिवन में दादी कॉटेज के ऊपर ही रहते थे, और उन्होंने ही यहाँ रह करके बहुत सी सेवाएं किया। ये शांतिवन खरीदने के भी वो निमित्त बने थे, जमीन खरीदने के। तो लॉकडाउन से 3-4 साल पहले वो हमको मिले, ऐसे बगीचे में बैठे हुए थे, तो मुझे उन्होंने बुलाया, बोला आपको याद है मैं आपका सेवाधारी था। मैंने कहा तो सेवाधारी थे ना, अभी तो आप यहाँ के मालिक मैनेजर हो हैं। वो तो सभी सेवाधारी होते हैं, श्री बाबा भी विश्व सेवाधारी है, अभी तो आप मैनेजर हो यहाँ के। तो देखो जिसने बाबा, कहने का भाव ये कि जिसने बाबा की श्रीमत मानी तो वो देखो जन्म जन्मांतर का भाग्य बना लिया, और जिसने श्रीमत नहीं मानी तो देखो जन्म जन्म का भाग्य गंवा दिया। तो अब टाइम पूरा हो गया, मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया है, तो मैं पूरा करता हूँ। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शिव कुमार भाई जी। ड्रामा अनुसार संगम युग पर आपको परम सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा का महायज्ञ एक बहुत बड़ी खान है और ऐसे खान में कई ऐसे विशेष हीरे बहुत कम हैं जिसमें से आज एक शिव कुमार भाई जी हम सभी के सामने प्रत्यक्ष हुए उनके अनुभव से।